मेरे युवा आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 11 जनवरी 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने 17 उन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं सतीश सांकला इंदौर मध्य प्रदेश से, दीपक जाट आप भी इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, नवीन कुमार तापा पंजाब से, राहुल कुमार बेगूसराय बिहार से, अनिल कुमार मौर्य फैजाबाद उत्तर प्रदेश से, सुरेंद्र वर्मा ग्वालियर मध्य प्रदेश से, अनिकेत नौटियाल कोट द्वारा उत्तराखंड से, अशोक कुमार भीखनपुर चंदौसी उत्तर प्रदेश से, मोहित यादव मोटला कला हरियाणा से, संगम रघुवंशी गंज बासौदा मध्य प्रदेश से, संदीप प्रसाद बोकारो झारखंड से, बालकृष्णा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, फक तबस्सुम पश्चिम बंगाल से, गौरव बाबा साहब पाटिल कोल्हापुर महाराष्ट्र से, उमेश कुमार यादव अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, मनीष कुमार फतेहपुर उत्तर प्रदेश से और ब्यूटी कुमारी भागलपुर बिहार से। तो सतीश, दीपक, नवीन, राहुल, अनिल, सुरेंद्र, अनिकेत, अशोक, मोहित, संगम, संदीप, बालकृष्ण, फक्र, गौरव, उमेश, मनीष और ब्यूटी, आप सभी 17 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब फोर्थ बैच के जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी है, सूचनागत खुशखबरी। और वो खुशखबरी ये है कि मेरे पास अब सूचना आई है, खबर आई है कि फोर्थ बैच के हमारे स्टूडेंट रहे हैं राजवीर सिंह। अभी कल जो यूपीएससी के मेंस का रिजल्ट आया है, राजवीर सिंह ने वह एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। अब वह इंटरव्यू के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो राजवीर, इसके लिए आपको आपके पूरे बैच के साथियों की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, और सच पूछे तो एफआईएस के पूरे परिवार की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत इस सफलता के लिए बधाइयां। और हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी कि आप इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर बहुत अच्छी रैंकिंग हासिल करें। और इसके लिए हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। और इसके साथ ही फोर्थ बैच के स्टूडेंट के लिए एक और भी सूचना है कि आपके ही बैच के एक स्टूडेंट रहे हैं गौरव सिंह, जिन्होंने अभी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो गौरव, आपको भी मैं आपके पूरे बैच की ओर से, एफआईएस की टीम की ओर से, अपनी एकेडमी की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से आपकी इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। दोस्तों, आज के मुख्य विषय में मैं थोड़ा सा अलग हटकर कुछ बातें आपसे करने जा रहा हूं, लेकिन वो आपके करंट अफेयर्स से अलग नहीं है और परीक्षा की सीमा में ही है। और आज के विषय का मैंने शीर्षक दिया है प्रकृति एवं विकृति, प्रकृति एवं विकृति। मैं इस विषय पर आपसे थोड़ी बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले आइए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं न्यूज पर। कल की जो सबसे बड़ी जो खबर है मित्रों, वो है एकल बांड खुदरा व्यापार के बारे में। आपने पढ़ा, आपने एयर इंडिया के बारे में खबरें पढ़ी और अखबार में काफी विस्तार से दिया हुआ भी है, वो आप देख लेंगे। मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको बहुत बेसिक जानकारी देना चाहूंगा ताकि आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मित्रों, सच पूछे तो यही उदारीकरण है, यही उदारीकरण है। देखिए, उदारीकरण के विरुद्ध में एक शब्द था इससे पहले जो चलता था 1990 से पहले, वो था संरक्षणवाद। संरक्षणवाद का मतलब है कि सरकार अपने यहां के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करेगी, और संरक्षण प्रदान करने के लिए उसके पास हथियार क्या हुआ करते थे, जो वस्तु बाहर से आ रही है उस पर बहुत हाई टैक्स लगा दिया जाए, ऊंचे दर के आयात शुल्क लगा दिए जाए, तो वो चीज हमारे बाजार में महंगी हो जाएगी। जब बाहर से आई हुई चीज हमारे बाजार में महंगी हो जाएगी तो हमारे यहां जो चीज बन रही है वो अपेक्षाकृत सस्ती रहेगी, तो लोग अपने यहां की चीजों को खरीदेंगे, बाहर की चीजों को नहीं खरीदेंगे। उदारवाद इसी के विरोध में है कि नहीं, आप ऊंचे टैक्स लगा करके उन्हें अपने यहां मार्केट में आने से रोकेंगे नहीं। और दूसरी लाइसेंस वगैरह की प्रणाली थी कि आपको हमारे यहां व्यापार करना होगा, उद्योग लगाने होंगे, तो आपको सरकार लाइसेंस देगी, राइट। अब कल की जो खबर है उसको उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये अंतर आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। एकल ब्रांड खुदरा व्यापार, राइट, एकल ब्रांड खुदरा व्यापार, एकल का मतलब एक, इंग्लिश में शब्द भी है सिंगल, मतलब एक ऐसी शॉप होगी, कह लीजिए एक ऐसी दुकान होगी जिसमें एक ही कंपनी का सामान होगा। जैसे आप नाइकी, एडिडास, ये सब तो आपने शॉप देखे होंगे, है ना, जहां आपके स्पोर्ट्स के और जूते वगैरह और जर्सियां वगैरह मिलती हैं। जब आप इन दुकानों में जाते हैं तो आपको केवल उसी कंपनी का सामान मिलता है। जैसे आप रेमंड के शोरूम में जाइए, दो तरह की दुकानें ले लीजिए, एक दुकान है कपड़े की दुकान है जहां सूट के लेंथ मिलते हैं, सूट के कपड़े मिलते हैं, तो वहां आपको रेमंड के भी मिल जाएंगे और दूसरी कंपनी के भी सूट लेंथ मिल जाएंगे। लेकिन जब आप रेमंड के शोरूम में जाएंगे तो वहां सिर्फ रेमंड का मिलेगा, यानी कि ये जो अनुमति सरकार ने दी है ये केवल एकल ब्रांड के लिए है। एकल ब्रांड मतलब उसमें एक ही कंपनी का सामान बिकेगा, राइट। जैसे वालमार्ट को लीजिए, वालमार्ट का नाम आपने सुना होगा, तो वालमार्ट एक ऐसी दुकान है, कह लीजिए एक सुपरमार्केट है जिसमें कई कंपनी का सामान होता है, वहां आप ढेर सारा कंपनियों की चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। दूसरा दिया हुआ है खुदरा यानी कि रिटेल, ये ऐसा नहीं है कि ये होलसेल बेचेंगे, ये हम आप जैसे लोगों को जो एक एक दो दो पीस लेना चाह रहे हैं उनको खुदरा ही रिटेल सेल करेंगे, ये होलसेल सेल नहीं करेंगे। तो ये अपनी दुकानें अब भारत में खोल सकते हैं एकल ब्रांड के तहत खुदरा व्यापार के लिए, और उस पर 100% पूंजी लगा सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब उन्हें इसके लिए सरकार से परमिशन नहीं लेनी होगी, ऑटोमेटिक रूट से हो जाएगा। देखिए ये काम तो पहले भी हो चुका था, लेकिन उस समय उन्हें सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, और सरकार से परमिशन लेना इतना आसान काम नहीं होता है, लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लंबा वक्त लगता है, उसकी अपनी प्रक्रिया होती है, तो अब उन्हें वो भी नहीं लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि उनके लिए अब भारत में आना आसान हो गया। बस अब आप देखते हैं कि इसको लेकर के बट नेचुरल है कि भारत के जो खुदरा व्यापारी हैं वो थोड़े से परेशान होंगे, हमारे यहां की कंपनी भी परेशान होंगी, इसलिए कि वो आकर के अगर सस्ते में बेचने लगे, मतलब भारतीय जो उद्योग है इससे जुड़े हुए, तो बट नेचुरल है कि उनका कॉम्पिटिशन होगा, तो उनके व्यापार को नुकसान हो सकता है। और उसी बात को लेकर के जो हमारे भारतीय व्यापारी हैं, जो संगठन है, वो थोड़ी सी इसकी आलोचना भी कर रहे हैं कि इससे हमारा अपना व्यापार नुकसान में आएगा। दूसरी जो खबर है मित्रों, आपने पहली ही खबर थी ये ऑल इंडिया रेडियो की कि प्रधानमंत्री जी नीति आयोग में कुछ अर्थशास्त्री आए हुए, उनसे किसानों की आय बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें एक बड़ी खूबसूरत लाइन थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, किसानों की अगर हमें आय बढ़ानी है तो अब हमें कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर नहीं देना चाहिए। मतलब मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं, मतलब हम लगता क्या है कि अगर कृषि का उत्पादन बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए कि एक एकड़ में 10 क्विंटल हो रहा है, मान लीजिए धान हो रहा है, अगर 10 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल होने लगे तो हमें लगेगा कि जैसे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, जबकि सच ऐसा नहीं है। एक तो दुगना उत्पादन होना ही बहुत मुश्किल है, फिर अगर दुगना उत्पादन करना होगा तो आपको उसके लिए चीजें, उसमें लागत लगानी पड़ेगी। तो उसमें एक बात कही गई और इस पर आप सब विचार भी कीजिएगा, तो ये जो कृषि उत्पादन बढ़ाने पर हमें जोर नहीं देना चाहिए बल्कि किसानों की आय बढ़ाने पर जोर देना चाहिए कि कैसे हम किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। देखिए उसके लिए बहुत तरीके हैं, उनको आप दूसरे उद्योग छोटे छोटे काम में लगा दीजिए, कृषि के साथ साथ वो पशुपालन करने लगे, कुटीर उद्योग जैसी चीजें करने लगे, दुग्ध पालन इस तरह से दुग्ध के क्षेत्र में आ जाए, तो जब इस तरह का काम करने लगेंगे तो भले ही कृषि उत्पादन ज्यों का त्यों भी अगर बना रहेगा तो कम से कम उनकी आय बढ़ जाएगी। और आपको मालूम है कि सरकार ने 2022 तक हमारे किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य भी रखा हुआ है, तो ये बात मुझे आपके ध्यान में लानी थी। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, प्रकृति एवं विकृति। फ्रेंड्स, मैं इसे थोड़े से अलग एंगल से आपके सामने रख रहा हूं और आप सब इस पर विचार कीजिएगा। और ये मैं जो हमारी जो आईपीसी की धारा जो 377 है, जिसमें समलैंगिकता का प्रश्न अभी संविधान पीठ को सौंप दिया गया है, इस संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूं। जैसे समलैंगिकता, या कह लीजिए कि कोई ऐसी चीज जो हमें विकृत लगती है, एक पेड़ जिस तरह से उगना चाहिए था उस तरह से नहीं उगा, टेढ़ा मेढ़ा उग गया, ठीक है। एक बालक जब गर्भ से बाहर आता है तो उसकी एक आंख ही नहीं है, समझ लीजिए, ये समझ, आप कल्पना कीजिए कि उसके चेहरे पर एक ही आंख है, दो आंख की जगह एक ही आंख है, ठीक है। अब आप देखिए कि जहां इस तरह की चीजें हमें दिखाई देती हैं तो हम उसे क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं कि यह विकृति है ना, ये विकृत हो गया है। अब आप देखिए कि हम उसे विकृत कहते क्यों हैं, हम विकृत उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अलग है, सामान्यतया ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम उसे विकृत कहते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा गर्भ से बाहर आ रहा है, जन्म ले रहा है, तो उसकी दो आंखें होनी चाहिए, लेकिन उसकी एक ही आंख है, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये तो विकृत है, इसका चेहरा विकृत है। लेकिन मित्रों, इसको आप दूसरे एंगल से समझिए कि हम उसको विकृत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे बिहेवियर में या हमारी आंखों में या हमारे समाज के फ्रेम में वो फिट नहीं हो रहा है। हमारी आंखें अभी तक दो आंखों वाले बच्चे को देखने की अभ्यस्त है। आप एक ऐसे प्लेनेट की चर्चा कीजिए जहां पर हर कोई एक आंख वाला होगा, थोड़ी सी कल्पना कीजिए। देखिए, लॉजिकल तो यही बात आपको कहती है, जो लॉजिक है वो इसी तरह से सोचने के लिए विवश करती है। एक ऐसे आप ग्रह पे चले जाइए जहां पर लोगों की एक ही आंख है, और वहां कोई दो आंख वाला अगर बच्चा पैदा हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि ये विकृत है, वहां दो आंख वाला बच्चा विकृत कहलाएगा। लेकिन सच बात यह है मित्रों कि जो भी चीज प्रकृतिगत होती है वह विकृत नहीं होती, प्रकृति कभी गलती नहीं करती, वो हमारे अपनी सोच में फिट नहीं बैठ रहा है इसलिए हम उसे विकृत कहते हैं, विकृत उसे समाज करती है। जैसे मान लीजिए कि चलिए मैं हूं, ठीक ठाक हूं, एक्सीडेंट हो जाता है और मेरा चेहरा छत विक्षत हो जाता है, मतलब एक विकृत चेहरा हो जाता है, तो ये तो ठीक है कि उसका चेहरा विकृत हो गया है, मेरा चेहरा विकृत हो गया है एक्सीडेंट के कारण, तो ये प्रकृति ने नहीं किया है। प्रकृति तो जो भी निर्माण करती है वो अपने ढंग से करती है, वहां कोई गलती नहीं होती है। हमारे चूंकि दिमाग में एक फ्रेम बना हुआ है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि ये विकृत है, ये उसमें फिट नहीं बैठ रहा है। अब जैसे समलैंगिकता का प्रश्न है, और इस पर अभी विचार हो रहा है, और मैं आपको एक एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें दूसरे एंगल से इसी बात को लगभग कहने की कोशिश की गई है कि हमें लगता है कि अननेचुरल है, क्योंकि हमने पारस्परिक संबंधों को एक प्रकार से जीवन देने वाली एक प्रक्रिया मान ली है ना, स्त्री पुरुष के बीच संबंधों के आधार पर एक नए जीवन का जन्म होता है, और इस प्रक्रिया से परे अगर कोई संबंध बनते हैं तो वह विकृति है ना, वो सामान्य व्यवहार नहीं है। लेकिन मित्रों, जो सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया, अगर आप उस सिद्धांत के एंगल से उसे सोचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वो विकृति नहीं है, वह एक मेन स्ट्रीम से हट करके एक साइड की स्ट्रीम है, लेकिन वह भी है। तो समाज जितना उदार होता चला जाता है वह तथाकथित इन विकृतियों को एक्सेप्ट करता चला जाता है, यही समाज की उदारता है, और वही चीजों में परिवर्तन भी लाते हैं। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले जिस राष्ट्रगान को सिनेमा घरों में अनिवार्य कर दिया था, अब उसकी अनिवार्यता खत्म कर दी है, लचीलापन है और यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले समलैंगिकता के वालों को जो सजा दी जाती थी उस सजा को असंवैधानिक घोषित किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो असंवैधानिक नहीं है, उनको सजा दी ही जानी चाहिए क्योंकि कानून में ऐसा है, और अगर सरकार को लगता है कि ये गलत है तो संसद कानून बनाए। लेकिन अब अपनी उसी निर्णय पर वही सर्वोच्च न्यायालय उस पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हो गई है, ये उदारता के लक्षण है। तो इसको आप प्रकृति विकृति के संदर्भ में भी थोड़ा सा विचार करें तो आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अगर इससे रिलेटेड या सीधे सीधे इससे नहीं तो दूसरे भी इस तरह के कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इस पॉइंट को मेंशन करके दूसरों से आगे निकल सकते हैं। तो इसीलिए मित्रों मैंने आज इस विषय को आपके सामने रखने के बारे में सोचा। दोस्तों अब मैं आता हूं ईमेल पर। कुछ ईमेल मुझे मिले हैं, मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगा। जैसे एक ईमेल है कि हम जो राष्ट्रीय योजनाएं होती हैं उन पर ज्यादा ध्यान दें या जो राज्यों की छोटी छोटी योजनाएं होती हैं उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नहीं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के हिसाब से जो नेशनल स्कीम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, अगर राज्य की कोई ऐसी योजना है जो बहुत चर्चित हो गई है किसी वजह से तब फिर उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए। मित्रों कुछ स्टूडेंट ने पूछा है कि यहां 15 दिन की क्लासेस के लिए क्या अटेंड करने के लिए कोई एज लिमिट है? नो, कोई एज लिमिट नहीं है। इसमें आप जब भी चाहे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कि एक दो तीन लोगों ने यह भी पूछा है कि कहा जाता है कि आईएएस बनने के लिए बहुत अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए तभी आप आईएएस बन पाएंगे। ये बेकार की बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरह से आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। यूपीएससी को आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं और इसके एक नहीं सैकड़ों प्रमाण भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो मित्रों अब मैं जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और आप में से ही कुछ मित्रों के नाम हैं: अमित दुबे, राजेश कुमार चंडीगढ़ से, आकाश शर्मा गुजरात से, रोहित साहू, अनीस कुमार गुप्ता गिरिडीह झारखंड से, स्नेहा सूरत गुजरात से, ललिता गंगवार बरेली उत्तर प्रदेश से और सावन कन्नौजे बड़वानी मध्य प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।